ಸ್ಥಿರಮನ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಯೇ 78 ನಂಬರ್ ಕಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಹ ರಹೆ ಹೈನ್ ಚಕ್ಷುರ್ಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಶೀಲಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವಂ ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ತದ್ವತ್ ಆತ್ಮನಿ ದೇಹತ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ ಅಜ್ಞಾನ ಯೋಗತಃ. ಆಪ್ಕೆ ಸಾಧನೋ ಮೇ ಜಬ್ ಗಡಬಡಿ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಗಡಬಡ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಸಾಧನ ಸಹಿ ಹೋ तो आदमी सही चीज को पकड़ लेता है, लेकिन साधनों में गड़बड़ी है तो सब कुछ गलत दिखाई पड़ता है. चक्षु जो है वो साधन है. कभी बचपन में, अभी तो वो बचपन चला गया, बचपन में बच्चे घूमते थे ऐसे चक्षुर भ्याम भ्रमत शीलाभ्याम. बच्चा घूमता है बड़ी तेजी से और आसपास की प्रत्येक चीज घूमती हुई दिखाई देती है, जबकि घूमती नहीं है वो. लेकिन साधनों में विकृति होने के कारण साध्य भी हमको विकृत दिखाई देता है. कलयुग में सबसे बड़े दुख की बात यही है, हम अपने साधनों की शुद्धि नहीं करते और साध्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करते हैं. एक आपके मन में बात है, हमें वृंदावन जाना है, कहीं जाना, मैंने तीर्थ में जाना है. हम सोचते हैं वहां जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो साधन चाहिए, उसके लिए जो अर्थ, आपकी अर्थ में शुद्धि चाहिए. चोरी के पैसे से आप वृंदावन पहुंच गए तो पुण्य का लाभ नहीं होगा. सबसे पहले आपकी साधन की शुद्धि चाहिए. जब तक साधन की शुद्धि नहीं होगी तब तक साध्य के प्रति भी आपके मन में संदेह बना रहेगा. तो सबसे बड़ी चीज है साधन की शुद्धि. इसलिए प्राणायाम में ये बताया कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो पहले कुंभक मत किया करो, पहले नाड़ी शोधन करो. मैंने पूरक और रेचक करो. जब पूरक और रेचक आप करते हो, भागवत के 11वें स्कंद में इस बात का उल्लेख करते नव योगेश्वर कि पहले आपको पिंड को शोधन करना चाहिए. मैंने कभी आपको दृष्टांत भी दिया, पहले आप थाली को अच्छी तरह साफ करो, फिर थाली में भोजन डालो. थाली साफ किए बगैर यदि आप उसमें भोजन डालते हैं तो उस भोजन से पेट तो भरेगा लेकिन बीमारी होने के चांस ज्यादा हैं. तो सबसे पहले आपको अपने साधनों की शुद्धि पे ध्यान देना है. ये साधन यदि गलत हैं तो बहुत मुश्किल की बात है. चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम, आंखें घूमती हों, सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है, कमाल है. वस्तु घूम नहीं रही है लेकिन घूमती हुई मालूम पड़ रही है, क्योंकि आपकी आंखें घूम रही हैं. भ्रमशीलाभ्याम सर्वम भाति भ्रमात्मकम, सब कुछ चलता हुआ सा दिखाई देता है, सब कुछ घूमता हुआ सा दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको पृथ्वी नहीं रोकनी है, पेड़ पौधे नहीं रोकने हैं, आपको अपने को रोकना है। जैसे ही तुम रुके तो घूमते हुए पेड़ पौधे अपने आप खड़े हो जाएंगे। पर खड़े क्या हो जाएंगे, वो तो खड़े ही हैं, उनको खड़े करने की जरूरत नहीं है। और सही में यदि घूमने वो लग जाएं, फिर तो मुझे नहीं लगता कि तुम खड़े कर पाओगे उनको कभी भी, उनमें इतनी ताकत हो। इसलिए कहते हैं तदवत आत्मनि देहत्वम, उसी प्रकार से ये आत्मा भी देह में भ्रम होता है। भ्रम का मतलब घूमता है, बचपन जवानी और बुढ़ापा, और ये जो परिवर्तन है, जो घुमाव है, ये शरीर के घुमाव की वजह से सारा घुमाव आत्मा में दिखता है। इनका आपस में बड़ा गहरा संबंध है, इसलिए शास्त्रों में सबसे पहले साधनों की शुद्धि पे ध्यान दिया है। साधन शुद्ध किए बगैर आप सोचें, ऐसे आपकी बुद्धि भी होती है। ऐसा एक कथा आती है छोटी सी, महाभारत में जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है और जयद्रथ अभिमन्यु की लाश के साथ में कुछ पांव रख देता है उसकी गर्दन पे, अर्जुन को जब ये पता लगता है, अर्जुन बहुत दुखी होते हैं और एक प्रतिज्ञा करते हैं कि कल सूर्य अस्त होने के पहले मैं जयद्रथ की गर्दन काट दूंगा, और यदि नहीं काट पाया तो स्वयं मर जाऊंगा। अभिमन्यु के मरने के बाद यहां जीने का कोई मतलब नहीं है। देखो, ये मोह परमात्मा का बनाया हुआ एक अमोघ शस्त्र है। इस अमोघ शस्त्र से सारी धरती आपस में बंधी हुई है। इस अमोघ शस्त्र से ये संसार सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्ली अपने घरों को सात सात जगह घुमाती है, बड़ी मेहनत से रोज चूहे मार के लाती है। किसको खिलाने के लिए? बच्चों को खिलाने के लिए। ये तो है नहीं कि वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अमेरिका से डॉलर भेजेंगे बिल्ली के लिए, ऐसा कुछ है? ये संसार चलाता है ये मोह, ये परमात्मा ने बनाया। जब जयद्रथ को पता लगा, कर्ण के साथ में बैठा हुआ था, अंदर से बड़ा प्रसन्न, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी, तो कर्ण ने कहा, आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो आप। उसने कहा, यार आज तो लड़ाई जीत गए हम। और जबकि जयद्रथ उसकी बहन का पति है, देखो जो बहुत लोभी व्यक्ति होता है वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तुलसीदास ने एक दृष्टांत दिया है रामायण में, भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए। तो उसने पहले बोला, कामी के जैसे नारी प्रिय है ऐसा प्यार करना चाहिए। फिर उसको संतोष नहीं हुआ तुलसीदास को, उसने कहा, कामी व्यक्ति भी स्त्री को ठुकरा देता है यदि बहुत विपरीत चले तो। लोभी के प्रिय जिमी दाम, बस एक ही दृष्टांत ठीक है कि लोभी व्यक्ति जैसे पैसे से प्रेम करता है, पैसा कभी लोभी व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। कभी देखा आपने कि आपकी जेब की नोट आपसे प्रेम करती हो? कभी तुम बाथरूम में भूल जाओ और वो बोले, अरे ले जाओ जी मेरे को उठा के यहां से, आठ घंटे लाइन पे खड़े लेकर के 2000 की नोट पाई है, कुछ बोलेगी कभी? हो नहीं, तुलसी कहता है लोभी के पियजिमिदाम, लोभी जैसे धन से प्रेम करता है धन कभी लोभी से प्रेम नहीं करता। ऐसे ही जो भगवान से प्रेम करते हैं अपेक्षा शून्य होकर के, तो करण ने कहा कि आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? उसने कहा महाभारत की जीत निश्चित हो गई अभी। बोले क्यों? देखो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है सूर्यास्त के पहले हम मारेंगे जयद्रथ को, और द्रोणाचार्य के पास में हो गए तो नक्षत्र विद्या के अंदर द्रोणाचार्य को उसने छुपा रखा है, अपनी तरफ से उसने सुरक्षा पूरी कर रखी है। किसने? दुर्योधन ने, किसको बचाने के लिए। लेकिन आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, महाभारत आप बहुत गहराई से पढ़े तो मालूम पड़े, फिर भी दुर्योधन को पता है मैं कितना भी छुपाऊं तो भी कृष्ण सारथी हैं, अर्जुन शायद जयद्रथ तक पहुंच जाएगा। आदमी अपनी बुद्धि लगाता है बहुत तेजी से। उसने कहा फिर जब तू बोलता है पहुंच सकता है कृष्ण, इसमें हंसी की क्या बात है, फिर प्रसन्नता है? बोले नहीं, यदि जयद्रथ का सिर उसके हाथ से कट के गिरेगा और जमीन पर पड़ेगा तो अर्जुन का सिर अपने आप फट जाएगा। तो आज तो मित्र मेरे हाथ, दोनों हाथ में लड्डू हैं। जयद्रथ मरा तो अर्जुन का सिर फटा, और नहीं मरा तो अपने आप मरेगा। तो महाभारत का लगभग फैसला आ चुका है आज। करण बड़ा बुद्धिमान था। करण ने कहा जब तक वस्तु हाथ में नहीं आए तब तक खुशियां नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि उस तरफ कृष्ण है। वो आदमी भगवान कम है डिप्लोमेट ज्यादा है थोड़ा, और उसकी कोई सत्ता और प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। कर्ण को कृष्ण की सत्ता और कृष्ण के प्रभाव से किसी भी पल इनकार नहीं है, उसको कहीं न कहीं ये निश्चय है कि जीत उसी की होगी। भीष्म के पास में, ये बात ध्यान रखना कहां से बोल रहा हूं, भीष्म के पास जब कृष्ण गए, कृष्ण ने कहा समझाओ कौरवों को, तुम तो महारथी हो, मैं तो खाली सारथी हूं, फिर भी पांडवों के ऊपर इतना नियंत्रण रखता हूं, यदि मैं बोलूं तो पांच गांव में पांडव मान जाएंगे, सारथी हूं मैं, तुम महारथी हो। भीष्म पितामह ने कहा हे कृष्ण, आप उस सेना के सारथी हो जो सेना जीतने वाली है, और मैं उस सेना का महारथी हूं जो सेना हारने वाली है। सबसे ज्यादा दुख जनरल को होता है, और जो सेना जीत जाती है उसके सिपाही से लेकर और जनरल तक खुशियां ही खुशियां होती हैं। हम सब ऐसी सेनाओं के सेनापति हैं जो सेना हारने वाली है। ये आंख भी हार जाएंगी, ये कान भी हार जाएंगे, ये पांव भी हार जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे किसी सेनापति की सारी सेना लड़खड़ा जाती है, और वो सेनापति कितना लाचार होता है देखा होगा आपने। ऐसी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखो, वो ठीक वो सेनापति के समान लाचार मालूम पड़ता है। न अपने हाथ से सब कुछ पड़ा हुआ है, दो रोटी बना के खा नहीं सकता, पानी पड़ा हुआ है, फ्रिज का ढक्कन खोल के पी नहीं सकता है। उस सेनापति की क्या हाल होती होंगी जरा सोचो आप। वो करण उसको कह रहा है कि पक्का हो गया तू, लेकिन अभी तुम ऐसा करो मत, क्योंकि वो कृष्ण के प्रभाव को और कृष्ण के स्वभाव को और कृष्ण की नीति को जानता था। वो तो युद्ध प्रारंभ हुआ, ये बता रहा हूं जीव अपनी बुद्धि से क्या सोचता है और नियति को क्या मंजूर है। युद्ध प्रारंभ हुआ तो गेट पे पहले उसको द्रोणाचार्य मिले, और भगवान शंकराचार्य ने गीता के भाष्य में लिखा, आपने पढ़ा होगा, कि अर्जुन के जीवन में दो प्रतिज्ञाएं हैं, दो सिद्धांत हैं उसके, न दैन्यम न पलायनम। जीवन में कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगनी है और न कभी युद्ध में भागना है। द्रोणाचार्य सामने खड़े थे, लेकिन वो बूढ़ा ऐसा तकड़ा था कि हटना नहीं पड़ा, हटा नहीं सामने से। लगभग आधा दिन बीत गया, अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि अब क्या होगा, तो एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। कृष्ण ने कहा दूसरी तरफ चलें। उसने कहा नहीं, युद्ध में पीठ दिखाना अच्छी बात नहीं है, पढ़ो महाभारत, बड़ा मजा आएगा आपको। कृष्ण कहते हैं गुरु को पीठ दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, इससे बड़ा द्रोणाचार्य का कोई सम्मान नहीं हो सकता। तुम क्या बात करता है, ये कोई कर्ण थोड़ा ही है, ये कोई क्षत्रिय योद्धा थोड़ा ही है, ये तो तुम्हारे गुरु हैं, और इनसे पराजित होना ये तो तुम्हारी शान है। वहां से उसका रथ वापस ले चलते, एक तो उसका अहंकार वहां तोड़ा उन्होंने, अब द्रोणाचार्य को बड़ा अहंकार हो गया कि जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण, और उसको हमने टस से मस नहीं किया उसने मुझे, और उसको हमने उल्टा भेज दिया। देखो महाभारत, भगवान उसी समय वहां भीम को भेजते हैं और भीम उसके रथ के सहित उठा करके उसको फेंक दिया। अब द्रोणाचार्य भी दुखी, अर्जुन परेशान। लगभग लगभग सूर्य अस्त होने के कगार पे आ गया, और जयद्रथ के दर्शन नहीं हुए। जिस आदमी के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो, मंजिल के लिए इतना पुरुषार्थ करता हो, और उस आदमी को मंजिल न दिखाई पड़े, इससे बड़ा जीवन में दुख कुछ हो नहीं सकता है। आप जब सही करते हो ना, और फिर आपको अपमानित होना पड़ता है, तब आपको जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। जब आप गलत करते हो और अपमानित होते हो, भले ही आपको दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझते हो इसमें कहीं ना कहीं मेरी भूल है, या आप स्वीकार करते हो अंदर से, यदि अच्छे आदमी हो तो। अब वो जयद्रथ तक पहुंचा नहीं, सूर्य अस्त हो चुका है। अस्त होता है तो जयद्रथ ने कहा कि अभी अर्जुन मरने जा रहा है, तो मैं उसको मरते हुए देखना चाहता हूं। तो द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, तुम अभी बाहर मत निकलो, क्योंकि कृष्ण का वो जो कहते हैं भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों जो है ना, कृष्ण के प्रभावज्ञ थे, ऐसा बोलते हैं। प्रभावज्ञ समझते हो, प्रभावम जानाति थी प्रभावज्ञम, वो कृष्ण के प्रभाव और स्वभाव से बहुत विज्ञ थे। उन्होंने कहा ये आदमी अंतिम क्षण में क्या कर दे कुछ पता नहीं है। एक तो अर्जुन का विमान भी तोड़ दिया, एकदम अर्जुन मरने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण ने कहा देखो, जीवन का दस्तूर है ये, इसको व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, वो व्यक्ति नासमझ है जो जीवन की सत्यता को स्वीकार नहीं करता और सत्य से मुंह मोड़ने से कहीं सत्य से पीछा नहीं छूटता है। आपके बाल सफेद हो गए, आपने काले कर दिए, अपने को धोखा दे दिया कि मैं जवान हूं, तो जवान तुम हो नहीं जाओगे। स्थिति नहीं बदलती, तथ्य नहीं बदलते कभी। उन्होंने कहा अभी तुम जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है वो पूरी करो। अब उसको कृष्ण पे गुस्सा भी आता है अंदर से कि आदमी कितना क्रूर है। देखो बोलता है चिता पे बैठो, और जब वो चिता पे बैठने के लिए जाता है उधर जयद्रथ को खुजली होती है। द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया। फिर वो दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन कहता है गुरुजी आप रहने दो, जाने दो, देखने दो कैसा मरता है दुश्मन, उसका आनंद लेने दो उसको, आप हमेशा जो है अंदर से पांडवों के पक्ष में ही रहते हो। वो डांट दिया उसने किसको, द्रोणाचार्य को ने भी कहा जाओ ठीक है देखो तमाशा हो जाता है। अर्जुन जब जाने लगा तो अर्जुन की आंखों पे आंसू आ गए थोड़ी सी। तो श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को तुमने भेड़ बकरी की तरह मारा है और अपने मरने की बारी आ गई तो रोने लग गए। अर्जुन ने वहां एक बात कही कृष्ण को, दिल छूने वाली बात कही उसने। उसने कहा नहीं, जब मैं छोटा था तो सोता था रात को, जैसे तुम आजकल टीवी देख के सोते हो ना पापी, ऐसी कुंती हमको कोई कहानी सुना करके सोया करती थी और सुलाया करती थी। गरीबी में जीवन बीता है, दुख में जीवन बीता है, तो कुंती कहा करती थी जो अपने जीवन को परमात्मा को सौंप देता है वो व्यक्ति मंजिल पे पहुंचे बगैर मर नहीं सकता है। तो वो मंजिल पे पहुंचता ही है। मैंने भी अपना जीवन तुम्हें सौंपा था। और उसने जो बात समझी है वो बड़ी महत्वपूर्ण। उसने कहा मेरे समर्पण में कहां कमी रह गई, ये कभी आपने इशारा नहीं किया मुझे। मृत्यु तो मैं जानता हूं कि निश्चित है, लेकिन मंजिल पे पहुंचने से पहले मैं मर गया। और कुंती कहती थी जो परमात्मा को अपने जीवन को सौंप देता है वो व्यक्ति मंजिल पे पहुंचे बगैर नहीं मरता, और मैं मंजिल पर पहुंचे बगैर मर रहा हूं, तो कहीं न कहीं मेरे समर्पण में कोई कमी रह गई। और आपसे मेरी ये आशा थी कि जहां मेरे समर्पण में कमी थी वहां कम से कम आप थोड़ा इशारा तो करते, आपने इशारा भी नहीं किया। कृष्ण ने कहा ज्यादा ज्ञानवान की बात मत करो, ईश्वर का इतना क्रूर पक्ष सामने आता है। भगवान कहते हैं उसे, क्योंकि हम परिणाम जानते हैं इसलिए क्रूरता का अनुभव नहीं करते हैं। भगवान ने कहा देख अर्जुन, ये गांडीव अब इस पृथ्वी पे तेरे बगैर कोई चलाने वाला, हां अब तेरे बगैर इस पृथ्वी पे कोई गांडीव चला नहीं सकता है, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अर्जुन बोले ये आदमी प्रशंसा कर रहा है कि निंदा कर रहा है, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। फिर भी अर्जुन की कृष्ण के प्रति सुहृद वाली बुद्धि थी, ये उसकी खासियत थी। भगवान शंकराचार्य ने लिखा परमात्मा की भक्ति करते समय एक बात ख्याल रखनी चाहिए, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिक्षति। परमात्मा बिना भला चाहे जीव का भला करते हैं। ये बुद्धि रख करके यदि व्यक्ति तप करता है, ये बुद्धि रख करके व्यक्ति यदि साधना करता है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। लेकिन दुख के समय ये बुद्धि रहती, अब ये ऐसा कर रहा है। उधर से जयद्रथ जो है उसकी मृत्यु को देखने के लिए पास में आ गया। अब द्रोणाचार्य तो समझ गए कुछ है दाल में, कुछ काला तो है जरूर, लेकिन अब इन लोगों के सामने बिचारी बूढ़े की कुछ चलती नहीं है सब, ये खुशियां मनाने वाले लोग हैं सब। अब वो जब बैठने लगा उसमें तो कहते हैं जो ज्योतिष वाले भी हैं वो कहते हैं उस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण था, उस समय सायंकाल सूर्यास्त के समय पूरे सूर्य ढक गया था, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुदर्शन चक्र से कृष्ण ने ढका था, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, देखो पक्षियों को भी भ्रम हो जाता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पक्षियों को भी ये मालूम पड़ता है कि रात हो गई है। प्रकृति के नियम के अनुसार पशु और पक्षियों को भ्रम नहीं होता जल्दी, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है, यदि पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया उस समय पशु और पक्षियों को भ्रम हो जाता है, उनको भी एहसास होता है कि रात हो गई। आप विचार करो थोड़ा, सूर्य ढका पूरा, जयद्रथ सामने आ गया अभी, अब अर्जुन को सामने जयद्रथ दिख रहा है, गांडीव हाथ में है, धनुष बाण हाथ में है, लेकिन आदमी में अपनी प्रतिज्ञा से कैसा बंधा हुआ है। फिर सूर्य ग्रहण का समय पूरा होता है, पूर्ण सूर्य चमकता है, तो कृष्ण ने कहा अब देख मत, तेरी मंजिल तेरे सामने खड़ी है, अब देखना नहीं इधर उधर, और एक ख्याल रखना कि इसका सिर तुम्हारे बाण से नीचे न गिरे, ये सिर इसके बाप की गोदी पे गिरना चाहिए, अनुदितीय जो होती, वेद के अंदर दो मंत्र आते हैं, उदितीय जो होती अनुदितीय जो होती, जब सूर्य उदय होता है तब उसकी पूजा होती है और जब सूर्य अस्त होता है तब पूजा होती है, सूर्य अस्त की पूजा उसका बाप करता था, सूर्य को अंजलि देता था, उसके हाथ में उसका सिर पड़ गया, और जैसे ही उसके हाथ में उसका सिर फट गया। हम अपनी बुद्धि से क्या सोच सकते हैं, साधना के सूत्र यही हैं कि सबसे पहले आपको अपने साधनों को ठीक करना चाहिए, साधन यदि आपके ठीक हो गए तो आप भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। आप पहले तो देखो तो सही जरा थोड़ा सा, हम अधिकारी किसके हैं, जिस चीज के अधिकारी हो उसी को पाने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसके अधिकारी हो उस चीज को पाने की चेष्टा करोगे वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, और जिसके तुम अधिकारी नहीं हो उसको पाने की चेष्टा करोगे तो मिल गई। तुम्हारे पास में आंख नहीं है, कितनी भी कोशिश करो आप रूप देख नहीं सकते, इसलिए पहले अपनी अधिकारिता का मूल्यांकन करो, हम किस चीज के अधिकारी हैं, हम गीता पढ़ने के अधिकारी हैं, गीता का पाठ का अधिकारी हैं, तो शायद गीता का पाठ करें तो हमारे जीवन में कुछ फलित हो जाए, और हम सोचें कि हम ब्रह्मसूत्र पढ़ लें हमें कुछ मिल जाए तो बड़ा कठिन काम है, उसको प्राप्त करने की हमने योग्यता नहीं संपादित की है, न हमने विवेक का संपादन किया, न वैराग्य का संपादन किया, न षट संपत्ति का संपादन किया, न हमारे जीवन में कहीं मुमुक्षुता दिखाई देती है, तो जिस चीज के हमारे अंदर योग्यता नहीं है, जिस चीज के हमारे अंदर पात्रता नहीं है, जिस चीज के हमारे पास में साधन नहीं है, उन चीजों को प्राप्त करने की सतत कोशिश करना अपनी साधना में असफलता और निराशा का कारण है, इसलिए साधनों को ठीक करना चाहिए। यही बता रहे हैं, देख लो। चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम, ये चक्षु जो आपके साधन हैं ये घूम रहे हैं, इसलिए जो नहीं घूम रहा है वो भी घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो नहीं घूम रहा है वो घूमता हुआ नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे साधन घूम रहे हैं और अचल वो भी एकदम चक्कर मारता हुआ नजर आ रहा है। पहले साधनों को ठीक करो, साधनों को ठीक किए बगैर पहले गाड़ी वाड़ी में हवा हवा बराबर भर देना है। वो कहां जाते हो? बंबई के लोग बेचारे घूमने के लिए बड़ी मुश्किल से, किधर जाते हो? लोनावाला नहीं है, लोनावाला तो तुम जाता है, एक और है कहीं, वो कल्याण के आगे माथेरान। गाड़ी यदि बराबर नहीं करी है ना, फिर उल्टी आएगी सीधी वो, क्योंकि चढ़ाई बहुत खतरनाक है। इसलिए पहले गाड़ी पे ध्यान देना, पेट्रोल पे ध्यान देना, ब्रेक पे ध्यान देना। तुम तो गाड़ी, पेट्रोल, ब्रेक कुछ पे ध्यान नहीं देते हो और सीधा माथेरान पे तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। पहले अपने साधनों की शुद्धि करो। आचार्य ने कहा कि गलत साधनों से कभी लगे रहो, जैसे वो चौकीदार कहता है जागते रहो, और चोर भी सोचता है कि अभी ये नशे में है, उसको खाली बोलना है। महात्मा कथा सुनाते हैं, एक बारी की बात है, तोते बड़े परेशान हो गए, कोई बहेलिया आता था पकड़ के ले जाता था, अब एक तोते किसी व्यक्ति, उसने उनको मंत्र दिया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और हम नहीं फंसेंगे। तो बहेलिया बड़ा दुखी हो गया, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो फंसेंगे नहीं है, तो क्या होगा फिर इसका। वो गया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला, और बहेलिया, वो तोते सब वही बोले, लेकिन जब जैसे ही दाना डाला सब आकर के वहां बैठ गए, सब फंस गए, और फंसे हुए भी बोल रहे हैं क्या, अब इससे ज्यादा तू क्या फंसेगा। ऐसे ही है जिंदगी में, साधन जब तक शुद्ध नहीं होते हैं तब तक आदमी को, फिर कुछ समय के बाद जब बहुत बूढ़ा हो जाता है, अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं, तब आदमी को अपनी साधना पे संदेह होने लगता है। और कभी कभी तो साधना पे संदेह नहीं, परमात्मा के प्रति भी संदेह होने लगता है। अब साधन ठीक नहीं करोगे तो यही होगा, इसलिए पहले साधनों को ठीक करो। चलो आगे क्या बताते हैं। अलातम भ्रमेण भ्रमणे नैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वत् आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। सूर्यवत् अलात बोलते हैं, जलती हुई लकड़ी होती है ना, उसको बहुत तेजी से आप घुमाओ तो सूर्य के समान गोल मालूम पड़ता है, गोल है नहीं वो, तो घुमाने के कारण वो गोल मालूम पड़ रहा है। उसी प्रकार से अज्ञान के संबंध होने से ये आत्मा में देह की कल्पना हो जाती है। आगे देखो, महत्तत्वे सर्ववस्तूनाम अणुत्वम ही अतिदूरता तदवत् आत्मनि देहत्वम पश्यति अज्ञान योगतः। भाष्यकार कहते हैं, कितनी भी बड़ी वस्तु हो जब दूर से देखते हो तो छोटी दिखाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं, और वैज्ञानिक क्या, हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमने पढ़े हैं वो कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है, ये आकाश में दिखाई देने वाले तारे ये पृथ्वी से कई गुणे बड़े हैं, लेकिन जब हम इनको दूर से देखते हैं तो माथे में लगाने वाली बिंदिया के समान दिखाई देते हैं। ये छूटे हो गए, ये छोटे नहीं हुए, हमारे साधनों में कहीं कमी है ना। तदवत आत्म, उसी प्रकार से ये बताया। आगे देखो क्या बोलते हैं, सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं च उपनेत्रतः तदवत आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। एक ही जैसे सूत्र है, इसे फटाफट बता रहा हूं आपको। कोई बहुत छोटी वस्तु होती है, उपनेत्र, उपनेत्र मैंने, उपनेत्र किसको बोलते हैं, चश्मे के लिए बोलते हैं उपनेत्र, चश्मा है हाँ, उपनेत्र है, नेत्र के समीप उपनेत्र है, उपनेत्र बोलते हैं। जैसे जो परमात्मा है ना, परमात्मा, परमात्मा के लिए जैसे कोई वस्तु आप देखते हैं और बीच में पर्दा आ जाए ना, तो सामने वाली वस्तु नहीं दिखाई देती, बराबर नहीं दिखती यदि पर्दा बीच में आ गया तो। लेकिन एक पर्दा ऐसे भी है जिस पर्दे के आने से वस्तु और साफ दिखाई देती है, है कोई ऐसा पर्दा, यही चश्मा ऐसा पर्दा। हाँ, ये शुद्ध सत्व प्रधान जो माया है, ये देखने में सहयोगी होती है। कभी पुराने लोग देखे हमने, आप लोगों ने भी देखे होंगे शायद, कभी आप भी इतने पुराने हो जाएंगे, वो अखबार पढ़ने का शौक होता है तभी बूढ़े लोगों को, क्योंकि अखबार खरीदा है 5 रुपए का, सब पंक्ति उसकी पढ़ते हैं, और पढ़ाई में नहीं आती तो फिर वो लगाते हैं कि कुछ इतना बड़ा होता है ना वो क्या, और वो अक्षर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, सब साफ दिखाई देता है, वो यंत्र का कमाल है। अब वो यंत्र के कमाल से वस्तु के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, वस्तु छोटी बड़ी दिखती जरूर है लेकिन उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, वस्तु के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार से बताया उन्होंने कि आत्म तत्व भी अज्ञान के योग से ऐसा होता है। आगे दृष्टांत दे रहे हैं, कांच भूमौ जलत्वं वा जल भूमौ ही कांचता तदवत आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। जिस भूमि में कांच लगाया है, कांच कांच लगाते हैं तो वहां ऐसा लगता है पानी है, नहीं ना, कांच लगाते आपने देखा होगा, लगाते ऐसा तो ऐसा लगता है पानी उसके ऊपर रखा हुआ है भ्रम के कारण, और जल भूमौ कांचता, और फिर उसको देखते देखते कहीं उसको जल दिखाई दे उसको कांच का भ्रम होने लगता होता है, इसको बोलते हैं अनुन्यास्मकता। इसी प्रकार से बता दिया। अच्छा, यदवत अग्नौ मणित्वम ही मणौ च बन्निता पुमान तदवत आत्मनि देहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। कभी अग्नि में मणि का भ्रम हो जाता है, मणि में अग्नि का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार यहां भी हो जाता है। अच्छा, आगे बता रहे हैं अभी, अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वही तद्वत आत्मनि देहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। अभ्रेषु, अभ्र मैंने बादल, कभी आपने देखा होगा चंद्रमा जब खिलता है आसमान में बादल हों, बादल दौड़ते हैं और हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है, लगता है कि नहीं, ऐसा लगता है बड़ी तेजी से चंद्रमा दौड़ रहा है। जितनी तेजी से बादल दौड़ते हैं उतनी ही तेजी से चंद्रमा दौड़ता दिखाई देता है, जबकि वो दौड़ता है नहीं। इसी प्रकार से जितनी तेजी से परिवर्तन शरीर में होते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन आत्मा में दिखाई पड़ते हैं, जहां होते नहीं है, कहने का मतलब कितना ही समझो यदि आपको वेदांत समझना है, जहां जो चीज हो नहीं रही है वहां वो चीज प्रतीत हो रही है बस। चंद्रमा बिल्कुल नहीं चल रहा है लेकिन बादल चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा चल रहा है। इसी प्रकार इस शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि सारे परिवर्तन कहां हो रहे हैं, आत्मा में हो रहे हैं, उधर कोई परिवर्तन नहीं। उसी प्रकार से बताए, अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावती, सोम मैंने चंद्रमा और अभ्र मैंने बादल, दौड़ते बादल हैं, और बादलों की ओट में छुपा चंद्रमा, ऐसा लगता है कि बहुत, जबकि चंद्रमा में और बादलों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत अंतर है। प्लेन भी जब उड़ता है तो बादलों के ऊपर उड़ता है, और वहां से तो चांद लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी जो है ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे भाग रहा है वो। ऐसे ही कहीं आत्मा और शरीर का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से ही होती है। अभिव्यक्ति का साधन तो शरीर है, शरीर के सिवाय अभिव्यक्ति कैसी होगी उसकी? आप देखो कमाल सृष्टि का भी, यदि आप देखो तो इतने गजब का है सृष्टि का खेल भी ना। मेमनकार ने लिखा है, अजन्मानो लोकः किम अवयव बंतोपि जगताम मदिष्ठातारम किम भव विदिरना दृत्य भवती। देखो इस लोकों को देखो आप, जमीन से आसमान तक एक एक चीज कैसी बनी हुई है, उसको देख के लगता है अजन्मानो लोका किम, ये अजन्मे तो नहीं हो सकते, और इनको बनाने वाला तो कोई बहुत समर्थ बुद्धिमान और सत्य संकल्प होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं देखो, तदवद आत्मनि देहत्वं पश्यति, उसी प्रकार से जैसे बादलों की चंचलता का अध्यारोप हम कहां करते हैं, चंद्रमा पर कर लेते हैं, उसी प्रकार से शरीर आदि की जो उपाधियां हैं उनका हम अध्यारोप कहां कर देते हैं, आत्मा में कर लेते हैं। अच्छा, यथैव दिग विप्रियासु मोहात् भवति कस्यचित् तदवत् आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। यथैव दिग विप्रियासु, दिग बोलते हैं दिशाओं के लिए, अभी तो ऐसा नहीं होता, पुराने जमाने के लोग बताते हैं कभी कभी दिशा भ्रम हो जाता है, जंगल में आप रहो ना तो दिशा भ्रम हो जाता है। अभी तो वो डब्बी वो नहीं होता अपने पास नापने वाला, वो नहीं होता है, उस समय नहीं था ये, तो आदमी को भ्रम हो जाता था कि पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। एक महात्मा कहते थे, हम जब नर्मदा किनारे जाते हैं तो हमारे को हमेशा भ्रम हो जाता है कि ये उत्तर वाहिनी किधर है और दक्षिण वाहिनी किधर है। अच्छा, समझ भी जाते हैं लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर एक भ्रम जो है ना, ऐसा है। इसी प्रकार से यथैव दिग विप्रियासो, दिग माने दिशा, विप्रयास माने विपरीत ज्ञान, विप्रयास बोलते हैं विपरीत ज्ञान के लिए, मोहात् भवती, मोह बस होता है, मोह का मतलब अज्ञान बस होता है, अज्ञान बस होता है। ये जो मोह जो है ना, एक बड़ी विलक्षण चीज है, ये अपने ही ज्ञान को ढक लेता है। मोह जो है ना दूसरे के ज्ञान को नहीं ढकता, अपने ही ज्ञान को ढकता है। वासना जब प्रबल होती है तो आपके अनुभव के ऊपर वो भारी पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब खर और दूषण मरे तो रावण ने कहा कि खर और दूषण मेरे समान बलवान हैं, अब बिना परमात्मा के उनको कोई मार सकता नहीं, परमात्मा का निश्चय हो गया उसको, परमात्मा का निश्चय हो गया। उसने कहा परमात्मा है पक्का, क्योंकि परमात्मा के बगैर कोई खर दूषण को मार नहीं सकता है। खर दूषण मोसम बल बनता, ऐसा लिखा है वहां। लेकिन जब उसने मारीच को सोने का मृग बना करके भेजा और वो राम की कुटिया के सामने गया और राम उसके पीछे पड़े, उसने कहा ये तो भगवान तो क्या है, तो मूर्ख आदमी है। अरे जिसको तुम अपनी परीक्षा की कसौटी पे कस सको वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं, परमात्मा श्रद्धा का विषय है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद के अंदर उद्दालक श्वेत केतु से कहते हैं श्रद्धस्व सौम्य। ये सौम्य सत्य को समझने के लिए, आप सत्य की परीक्षा तभी ले सकते हो जब आप सत्य से बड़े हो। परीक्षा कौन लेता है? जो तुम्हारे से ज्यादा जानकार होगा वो तुम्हारी परीक्षा लेगा, और जो तुम्हारे से कम जानकार है वो तुम्हारी परीक्षा कैसे ले सकता है? नहीं, उसने कहा परमात्मा ये परीक्षा का विषय नहीं है। तो रावण के मापदंड में वो बैठे नहीं भगवान, और रावण ने अंतिम में निश्चय कर दिया ये महामूर्ख व्यक्ति है। वहीं लक्ष्मण की बुद्धि देखो आप, जब वो माया के मृग को मारते हैं और वो हा लक्ष्मण चिल्लाता है, सीता उससे कहती है कि राम विपत्ति में पड़ गया। लक्ष्मण ने कहा माता एक बात मैं आपसे कहता हूं, जीव मुसीबत में पड़े परमात्मा को पुकारे तो बात समझ में आती है कुछ, क्योंकि सभी पुकारते ही हैं, हम सब उसी श्रेणी के हैं। लेकिन परमात्मा मुसीबत में पड़े और जीव को पुकारे ये बात कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि लक्ष्मण का राम परमात्मा है इस विषय में निश्चय है। और जब परमात्मा के स्वरूप का आप निश्चय करते हो उस समय आपको परमात्मा की सामर्थ्य के प्रति संदेह नहीं होता। जब तक आप स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते तब तक परमात्मा की सामर्थ्य के प्रति आपको संशय रहता है। उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए बोलते हैं ये बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं मोहात। मोह जो है ना वो अपने ही ज्ञान को नष्ट कर देता है। आपका भी तो ज्ञान है, आप भी एक परंपरा जानते हो, हमारे मकान का मालिक, हमारी फैक्ट्री का मालिक पहले कोई और था, उसके बाद कोई और हुआ, आज हम हैं। निश्चय करो कि कल कोई दूसरा होगा। अरे पकड़ने का मजा लेते हो, कभी छोड़ने का भी मजा लो यार। हम जिंदगी में एक ही मजा लेते हैं, छोड़ने का भी बड़ा मजा होता है। बढ़िया बढ़िया भोजन खाने का बहुत मजा आता है, नहीं आता है? बड़ा आनंद आता है, लेकिन पेट साफ हो जाए उसका मजा ही कुछ और है। आदमी केवल पकड़ने का मजा जानता है, अरे छोड़ो थोड़ा सा। मोह के कारण जो अपना ज्ञान है उस ज्ञान को नष्ट होने मत दो। बस यथा शशि जले भाति, चलो इसका श्लोक का कल बताएंगे, टाइम पूरा हो गया।